ओम शांति। हम सभी सेवाओं के फील्ड में भी हैं और श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी हमें करना है। संगठन में सभी रहते हैं, हमारी संगठन की शक्ति सेवाओं को सहज और सफल कर देती है। जहां संगठन एकजुट नहीं होता, वहां हमारी शक्तियां भी बिखर जाती हैं और थोड़े काम में बहुत समय लग जाता है। मैं पहले आपको एक बहुत अच्छी बात याद दिलाऊं बाबा की, जो आज मुझे सवेरे से याद आ रही थी। अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य पे हम आएंगे अभी, एक बहुत सुंदर स्लोगन सभी अपने पास रख लें, नो कंप्लेंट नो क्वेश्चन। याद होगा आपको बाबा का महावाक्य, जो कंप्लेंट करते रहते हैं वो कंप्लीट नहीं बन पाएंगे। बहुतों से मिलते हैं, आप लोग भी मिलते होंगे, सब दूसरों की कंप्लेंट करते हैं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, वहां ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं। ये कंप्लेंट हमारे मन को कैसा कर देती है बोलो? एक खुशी ऐसी खत्म होती है जिसमें संकल्प भी कुछ अच्छे होंगे लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिलता, और क्वेश्चन उठते रहते हैं व्यवस्था पर, बाबा पर। बाबा पर भी क्वेश्चन बहुत उठते हैं ना, बाबा क्यों नहीं बदलता ये सब, बाबा क्या कर रहा है, बाबा साक्षी क्यों रहता है। पर बाबा ने बता दिया, जो कुछ हो रहा है राइट हो रहा है, अब खराब तो बहुत कुछ हो रहा है। राइट या ब्राइट? बहुत ही ज्ञान युक्त होने की, साक्षी दृष्टा होने की, ड्रामा पर नामा के रहस्यों को जानने की जरूरत पड़ती है, तब चित्त शांत रहता है और हम दूसरे की कंप्लेन न करके अपने को स्ट्रांग बनाने में लग जाते हैं। मान लो हम किसी की शिकायत करते हो, भाई ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करता है, और वो व्यक्ति ऐसा करना छोड़ दे लेकिन हमारी स्थिति ऊंची ना उठे, तो उसमें तो सुधार आ गया लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरा व्यक्ति हमसे कैसा भी कर रहा हो, हम उसी से आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढ लें, इससे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस बात का सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि समय तेजी से, जो बाबा के सब थे, नाजुक होता जाता है। याद है ना, 5-7 साल से बाबा ये बात बार बार कहते थे, एक सीजन में तो कई बार कह दी, समय नाजुक होता जाता है। जिसके अच्छे दिन हैं उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन जिसे कुछ संघर्षों से गुजरना पड़ता है उसे पता चलता है, खराब हो गया सब कुछ। तो हम एक महान लक्ष्य को लेकर चलें, और हमारा सबसे सुंदर लक्ष्य क्या हो सकता है जो हमें साक्षी बना दे, और चारों ओर से हम अपनी आंखें और कान भी बंद कर लें, नहीं तो आंख भी खुली और कान भी खुले हैं। क्यों अर्जुन भाई, और सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। एक मुझे कह रहे थे, अरे वहां जाने से तो सफोकेशन होता है, मैं तो जाता ही नहीं, बहुत संकल्प चलते हैं। कौन सा महान लक्ष्य नायब भाई बोलो? सभी सोचेंगे, लक्ष्य के बहुत सारे स्वरूप हैं, उसको एक में बांध दिया जाए, बोलो? ऊंच पद पाना है तो इसके साथ, तो तो नहीं तो इधर उधर नहीं देखना है, कर्मातीत बनना है तो ठहरो, तो आगे सोचो बोलो पुरुषार्थ तेज करना है। मैं फिर वही पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे तो कहां से आ गया आज, देहत की दृष्टि रखनी है, फालो फादर करना है। एक रस अभी अंत आई ठीक है ठीक कहा इन्होंने, अभी से तैयारी तो करनी पड़ेगी ना तो हम लक्ष्य बना लें अपना कुछ और केवल उसे ही देखें, बाकी सबको नहीं। देखो एक हंसी की बात सुना देता हूं, हंसेंगे आप, और बहुत प्रैक्टिकल है। जब हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं ना रोड्स पे शहरों में बाहर नहीं, तो कभी कभी भैंस क्रॉस करती हैं, तो भैंसों की एक विशेषता है, मैं उनसे सीखता हूं ये कि वो केवल अपना लक्ष्य देखती हैं, वहां जाना है। आप गाड़ी आ रही हो या ट्रक आ रहा हो, आप हॉर्न बजा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो देखेगी भी आपकी ओर तो फिर चल देगी लक्ष्य, रहता है या नहीं? आपने भी देखा होगा जो गाड़ी चलाते हैं, आखिर गाड़ी रोकनी पड़ती है, इन्हें लक्ष्य पे पहुंचने दो फिर हम अपने लक्ष्य पर चले। हम भी केवल लक्ष्य को देखें, सोच लें सभी, इधर उधर की बातें हैं बहुत दुनिया में, सब जगह हैं, और मन में क्वेश्चन उठते हैं क्यों ये क्या हो रहा है। पर अगर हम ड्रामा की गुह्यता को, कर्मों की गहन गति को ध्यान में लाएं तो क्या हो रहा है अब, सभी इस पे चिंतन करेंगे, क्योंकि सभी को कर्मातीत होना होगा। कोई पुरुषार्थ से होंगे, कोई दूसरे ढंग से होंगे, तो सभी के दबे हुए संस्कार भी बाहर आएंगे, किसी के आने शुरू हो गए, किसी के आएंगे। पहले ही आ जाएं तो बुद्धिमान और श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन अंत में आए तो वो नष्ट कर देंगे। तो एक चीज ये हो गई है, इन संस्कारों के कारण संबंधों में कहीं ना कहीं टकराव होता है। सेवाओं में भी हम साथी बने हैं तो सेवाओं में भी वही तो साथी बने हैं ना जो कहीं ना कहीं साथ रहे हैं कल्प में, तो उनके कर्मों के हिसाब किताब, संस्कारों की और विचारों की भिन्नता के कारण कहीं ना कहीं टकराव होता है। इस टकराव से हमें स्वयं को बचाना है। हम लक्ष्य बना लें अपना, एक बहुत सुंदर बात जो मैं आप सबको सदा कहता हूं, आपको ही नहीं अपने को रोज याद दिलाता हूं, कहीं भी मेरी इधर उधर बुद्धि जाए मुझे फट से ये याद आता है, क्योंकि सब कुछ तो देखने और सुनने में आता है, फट से याद आता है कि हमें और चीजों में न जाकर अपने अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भरनी है। सरल शब्दों में ईश्वरीय खजानों से स्वयं को संपन्न करना है, ताकि आगे आप बोलेंगे जगन्नाथ भाई बोलो, ताकि सब जानते हैं आप, आने वाले समय में हम दूसरों को बहुत मदद कर सकें। हमारा ये सुंदर लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें संसार की बहुत आत्माओं को मदद करनी है। बोलो किस किस के मन में ये आवाज उठती है, ठीक है, उसके लिए हमें अपने को ईश्वरीय शक्तियों से भरना है। ये एक लक्ष्य ले लें, ठीक है, ये इसमें सब आ जाएगा। हम कर्मातीत की अवस्था की ओर भी चलेंगे, मैं इस कर्मातीत को विकर्मातीत भी कहता हूं, विकर्मों से परे हो जाए हम, न केवल विकर्म नष्ट कर ले लेकिन हमसे कोई विकर्म हो भी नहीं, और कर्म के प्रभाव से भी ऊपर उठ जाए, कर्मातीत। कर्म जो हम सारा दिन करते हैं उसमें हमारी बुद्धि पूरी तरह व्यस्त हो जाती है, ये सबके साथ होता है, तो कर्म में रहते हुए कर्म के इफेक्ट से ऊपर रहकर कुछ अच्छे अभ्यास करते रहें, ये कर्मातीत अवस्था की तैयारी है। तो हम एक महान लक्ष्य को लेकर चलें। और 5-7 दिन से मुझे एक बात बहुत ख्याल में आई, मैं बाहर था, देखते हैं सबको, देखते हैं ना कौन कहाँ बिजी हो गए हैं, ब्राह्मण भी कौन किस में लगे हैं, बहुत अच्छी आत्माएं मिलती हैं, बहुत अच्छी आत्माएं भी मिलती हैं। मुझे एक ने कहा, आप तो कहते हो 8 घंटे ये अभ्यास करो, मैं तो सारा दिन करती हूँ। झूठ नहीं है, करते हैं, लगे रहते हैं। एक माता आ जाई मेरे पास, विदेश के थे ये 3 एक ही परिवार के, कहा जब तक मैं तो पहली बार सुना, ये आप भी पहली बार सुनेंगे, रोज टाइम भी उसने बताया, पता नहीं 6 से 9 बताया जैसे हमको बताया, 108 बार सुदर्शन चक्र का अभ्यास न कर लूं मुझे लगता है कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो देखिए ये भी एक लगन है ना, चाहे उससे कितना भी हो रहा हो, ज्ञान में वो 7 साल से ही है, कितना भी हो रहा हो लेकिन कोई भी अभ्यास करने के प्रति ऐसी लगन रखना, ये बहुत अनुपम बात है ना। हम सब किसी भी बात को अभ्यास में लाने के लिए ऐसी लगन धारण कर लें। तो मुझे याद आ रही थी कई दिन से कि हम दिन में कई बार अपने को कुछ स्मृतियां दिलाया करें, हम 2-4 स्मृतियां अपने पास रख लें, अब हम वो सब करेंगे, और अपने को उसको याद दिलाकर जागृत करें। ये हमें अपने को जगाना होता है ना। अब वो कुछ स्मृतियां हम निकाल लें जिनसे हम अपने को जगाते रहेंगे, ताकि कर्मों का इफेक्ट हम पे हावी ना हो जाए, ठीक है ना। कर्म में कभी कभी हर मनुष्य इतना बिजी हो जाता, हम भी हो जाते, हम देखते हैं, तभी मुझे ये संकल्प हुआ कि उससे ऊपर रहने के लिए हम कुछ स्मृतियां रख लें। बोलो कौन कौन से, जो हमें जागृत रखेंगी। मैं पूर्वज हूं तो मुझे सबके पालना करनी है, बहुत जागृति दिलाएगी ये। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरे संकल्पों के वाइब्रेशंस भी विश्व का कल्याण करेंगे, मेरी शुभ भावनाएं भी विश्व की आत्माओं को बल देंगी, मेरी प्योरिटी भी प्रकृति को बदलने में बहुत बड़ा काम करेगी। स्मृति है ये। और बोलो महेश बाबू, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको मैं बाबा के पिछले कुछ शब्दों में कह दूं, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है, बोला ना पीछे बाबा ने 2-3 साल पहले, कई बार ही आया, रिवाइज में भी आ गया ये, सृष्टि की स्थिति कभी उथल पुथल है, कभी शांति है, कभी चारों ओर खुशी का माहौल है, तो कभी परेशानियों की स्थिति है संसार में, उसका आधार तुम हो, आधार मोट, तुम्हारी स्थिति उसका आधार है। बहुत अच्छी बात। एक चीज हम सदा याद दिलाया करें अपने को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये बातें या समस्याएं बहुत छोटी हैं, बड़े तो हम हैं, बड़ा तो हमारा बाबा है। ऐसी कुछ स्मृतियां हरेक अपने पास रख लें। इससे अपने को जागृत अवस्था में रखेंगे। पसंद है? सभी अपनी अपनी चुनेंगे और ये पुरुषार्थ का प्लान सबको स्वयं बनाना है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने पुरुषार्थ का प्लानिंग स्वयं नहीं करता तब तक वो स्थायी होता नहीं। किसी के कहने से हम दो चार पांच सात दिन कर सकते हैं, फिर वो हल्का हो जाता है। हमें खुद का प्लान खुद बनाना है और उसको लगातार बनाना है ताकि हम जगे रहें। अब हम दूसरी बात पर आए जो हमारे संगठन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए, चाहे जिस सेवा में आप वर्तमान में हैं, चाहे हमारे सेवा केंद्रों के द्वारा सेवाएं होती हैं, सब जगह संगठन हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सेवारत हैं, आप जिम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं या किसी के साथ कार्य कर रहे हैं। संगठन में सेवाओं का आधार दो, सेवाओं की सफलता का आधार दो चीजों पर है, निमित्तात्माओं की स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस। कहीं भी यज्ञ में किसी भी जगह आप सेवारत हैं, ये दो आधार हैं। अगर वाइब्रेशंस निगेटिव हो जाते हैं, अगर वाइब्रेशंस टकराव के हो जाते हैं, कुछ कहा सुनी हो जाती है या किसी के संकल्प ही ऐसे वैसे चलते हैं, तो सेवाओं पर उसका इफेक्ट सीधा दिखाई देता है। बहुत जगह ऐसा हो गया है कि सेवाएं रुक गई हैं, या पुराने लोग, कुछ नए लोग भी ढीले होकर पीछे हटने लगे हैं। हमें उन स्थानों के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाना है ताकि सभी में जागृति आए। याद दिला दूं आपको, अंतिम पेपर कौन सा होगा? एक तो निश्चय का, दूसरा नष्टो मोह। और नष्टो मोह में सबसे बड़ा मोह किससे? अपनी देह से। कोई कहे मैं तो कुमार हूं और बिल्कुल घर बार छोड़ाया, मां भी चली गई, बाप भी चला गया, कोई नहीं आगे पीछे, मैं तो निर्मोही हूं, इससे काम नहीं चलेगा। निर्मोही की परिभाषा बहुत गहन है, तो निश्चय का भी पेपर जो शुरू है और मोह के भी पेपर शुरू है। मोह अनेकों को परेशान कर रहा है, दुखी बना रहा है। वो मोह भी गहरा है, सेवाओं से मोह हो सकता है, वस्तुओं से मोह हो सकता है, अपनी ड्यूटी से भी मोह हो सकता है। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो जरा पहली चिंतन और चर्चा करें, टकराव हमारे बीच में न हो, चाहे हम दो हैं तीन हैं, टकराव की स्थिति न बने। हम क्या करें? बोलो, पांच सात बातें निकालेंगे, सबको रोज के अनुभव हैं। टकराव के कारण को देखते हुए हमें क्या करना है? और बोलो, और थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाओ। स्वभाव सरल, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप, अगर हम दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो हम इतने फ्लेक्सिबल रहें कि एक ने कहा दूसरे ने माना, सहज भाव, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये तो है सब, गलत भी हो सकता है, लेकिन जब हम सहज भाव से कार्य करते हैं तो सफलता बहुत होती है, गलतियां कम से कम होंगी। और वो जो हमारा लक्ष्य है, ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में भरना, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। अगर हम सरल चित्त नहीं हैं तो अनेक संकल्प चलेंगे सेवाओं में, कईयों के तो संकल्पों का तूफान ही रहता है। एक को सेवा का चांस मिल गया, दूसरा भी योग्य है, वो संकल्प चला रहा है। क्या क्या चलाएंगे? इसको सफलता ना मिले तो अच्छा है, दोबारा मुझे चांस मिलेगा। इनको बहुत दिया जाता है, इनको बड़ा अभिमान आ गया है, तो वो सेवा कर रहे हैं और ये इधर परेशान हो रहे हैं और निगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं पूरी तरह। और वो इसके पीछे क्या हो गया? अपना स्वार्थ। सेवा बाबा की है और वो सफल होनी चाहिए, उसको चांस मिला तो मैं उसमें सहयोग कर दूं, ये भावना खत्म हो गई। तो ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। मान लो उसको भी चांस मिल जाए, वो स्पीकर तो बन सकते हैं लेकिन प्रभावकारी नहीं। और सेवाएं केवल स्पीच से नहीं होती, सेवाएं अनुभव करने और कराने से हो रही हैं। आजकल चारों ओर ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है, सेवाओं में सफल वही हैं जो दूसरों को अनुभव करा सके। बाबा ये बात बहुत पहले सुनाया करते थे, मुरलिया रिवाइज होकर वो आती रहती है, अभ्यक्त शुरू की है 72-73, तब की बहुत अच्छी मुरली है। जब कोई भाषण तैयार करते थे ना तो बाबा कहते थे वो तो ठीक है, तैयार कर लेना चाहिए, पर ध्यान पॉइंट पे रहे, उससे ज्यादा ध्यान स्वयं की स्थिति पर रहना चाहिए। नहीं तो यही याद करते रहेंगे ना, क्या क्या सुनाना है, कुछ भूल तो नहीं गया, ये सुनाया वो सुनाया, सुनने और सुनाने से काम नहीं चलता है। लोग आजकल अनुभव चाहते हैं। और आगे चले सेवाओं में, जब हम संगठित रूप से सेवाएं करते हैं, कौन सी बात सबसे अधिक बाधक है? बोलो। सेंसिटिव नेचर, बिल्कुल ठीक। और मैं और मेरापन, ईर्ष्या। मैं एक छोटी सी चीज देखता आता हूं कि किसी को जरा सा इंचार्ज बना दिया जाए, सबके साथ नहीं होती, उसमें अहम आ जाता है। इससे बचेंगे। आप योग्य हैं, आपको सेवा की जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदार व्यक्ति वही बहुत सफल है जो दूसरों को अपनी जिम्मेदारियों से सुख दे, सफल कराए, स्वयं को भी सफल करे। कई लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, अभी अभी इंचार्ज बनाया और कल से शुरू कर दी तोड़फोड़। बहुत होता है, सब जगह होता रहता है। और जो इससे ऊपर हैं, इंचार्ज नहीं, बाबा करा रहा है, हम निमित्त है, हमें जिम्मेदारी दी गई है तो हमें सबको यूनाइट करना है, मिलाना है, सफलता का मार्ग ढूंढना है, सहयोगी बना देना है सबको, नहीं तो टूट फूट हो जाती है और इसका नुकसान स्वयं को भी बहुत होता है। और कई लोग तो ये यक्का नियम है ऐसी बातें कह के अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। तो हम सभी संगठन में निमित्त भाव धारण करके अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। जैसे सीमा बहन ने कहा, सेंसिटिव नेचर ना हो, बहुत फीलिंग आना, कुछ भी सुनने को तैयार ही ना रहना। जिनकी सेंसिटिव नेचर होती है उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता और इससे उनकी प्रगति रुक जाती है और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। उनको फीलिंग आती रहेगी, दूसरे आगे निकल जाएंगे, वो पीछे के पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारी सेंसिटिव नेचर, जिससे निगेटिव एनर्जी फैलती है, जिससे हमें भी बहुत परेशानियां होंगी। बाबा के शब्दों में तो फीलिंग आना माना आधी मृत्यु। फेल तो है, फ्लू भी है, बहुत सारे शब्द बाबा इस पे बोले हैं। कभी आजकल नहीं आती ये बातें, लेकिन साकार के समय और थोड़ा अव्यक्त पार्ट 5-7 साल ये सब बहुत चला। अर्जुन भाई को याद होगा, प्रोफेसर साहब को भी याद है ना, फीलिंग पे बाबा बहुत ध्यान दिलाते थे। फीलिंग माना फुल नहीं, फीलिंग प्रूफ होना है तो फुल बनो, और जो फुल हैं वही परफेक्ट हैं। फीलिंग अच्छी चीजों की करो तो ये बुरी फीलिंग समाप्त हो जाएगी। ये फील करो मैं एक महान आत्मा हूं तो ये बुरी फीलिंग समाप्त हो जाएगी। बाबा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और ये कमजोरी जिसके अंदर भी होती है वो खुश नहीं रह सकते जीवन में, तो एक बहुत बड़ा लॉस। खुशी तो बहुत बड़ी चीज है ना। मनुष्य होकर खुश न हो तो उसकी बुद्धिमानी, उसके टैलेंट्स, उसकी जिम्मेदारी, उसके बाद धन, उसका परिवार, सब बेकार लगता है। खुशी बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे लोग सदैव दूसरों की कंप्लेंट ही करेंगे, ये मुझे तंग करते हैं। मैं अपनी फीलिंग को बढ़ाऊं, अपनी सेंसिटिव नेचर को नष्ट करूं, ये भूल जाता है, अंगुली दूसरों की ओर रहती है। तो हमें ये जो दूसरों की ओर अंगुली रखने की आदत है इसको जरा समाप्त करना है। महान वही बनेंगे, लक्ष्य पर वही पहुंचेंगे जो अपने को देखेंगे, अपने को चेंज करने का सोचेंगे। सारा संसार दूसरों को देख रहा है और ज्ञानी अपने को देखते हैं। जो दूसरों को देख रहे हैं दूसरों की बुराई ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म गति है ना वाइब्रेशंस की। जो कुछ हम दूसरों में देखते हैं उसके सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमको आने लगते हैं। और जो मनुष्य अपने को देख रहा है उसने अपने चारों ओर एक सुंदर प्रभा मंडल बना दिया होता है जिससे ये निगेटिव एनर्जी आती नहीं। तो हमें लक्ष्य रख लेना है, हमें अपने को बदलते चलना है। तो जहां भी संगठन है झुककर चलेंगे। संगठन हमारे लिए विघन न हो, संगठन हमारे लिए शक्ति हो। संगठन हमें महान बनाने के लिए, हमें लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए हमारा सहयोगी हो। संगठन हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाला न हो, ये कला हमको सीख लेनी है। और जिसकी कुछ भी समझ में ना आए वो कुछ छोटी छोटी चीजों को छोड़कर अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं, तो सब बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि हमें कहां स्वयं को चेंज करना है। नहीं तो मैं राइट हूं, जिसको फीलिंग आ रही वो भी यही सोच रहे मैं राइट हूं, जिसने फीलिंग दिलाई वो भी यही सोच रहे मैं राइट हूं, तो एक तो रोंग होगा ना। इसलिए अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाने से डीप और क्लियर रियलाइजेशन हो जाएगी। और बताया, बहने बताएंगी, संगठन हमारे लिए विघन न बने। सबको अनुभव है, बोलो। हाथ उठा के जरा। साक्षी भाव, ये थोड़ा बड़ा भाव है, थोड़ा इससे छोटा बता दो। लेट गो, हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना। नम्रता का गुण, बहुत अच्छी बात बताई। घरों को भी देख के बताओ, घर भी तो संगठन है ना, पांच सात लोग इकट्ठे रहते हैं। शुभ भावनाएं देना, हमारे एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हों, नम्रता, और हमारी भावनाएं दूसरों के लिए बहुत अच्छे, एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण। संगठन में जो बहुत समीप रहते हैं ये बहुत निगेटिव चीज हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड्स बदल जाते हैं, क्योंकि पास रहते हैं ना, उनके अवगुण साफ साफ दिखाई देते हैं। वो ढीले पुरुषार्थी हैं वो भी दिखाई देता है, वो सारा टाइम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं वो भी दिखाई देता है। बहुतों की समस्या है ना आजकल, बहुत जो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं सारा टाइम, वो भी बचे इससे। थोड़ा थोड़ा लगना ही है तो जरा बैलेंस कर ले जीवन में। सब कन्याएं बैठी है ना, आजकल ये नई माया शुरू है ना युवक युवकों के लिए। ठीक है, इस माया को जरा खातरी भी कर दो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो उसमें ही लगे रहें सारा दिन। उससे हमारा पुरुषार्थ डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज आप पढ़ेंगे देखेंगे उसका इफेक्ट मन पर आएगा ही, कोई उसके इफेक्ट से बचता नहीं है। और जिस चीज को आपने बहुत डीपली देख लिया, पढ़ लिया, वो गहराई से आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया, इसलिए निगेटिव चीजों से स्वयं को बचाना है। नम्रता एटीट्यूड की बात आज मुझे याद आई। विशेष रूप से आज ऐसे ही एक ग्रुप मिलने आया तो एक बहन जी ने मुझे सुनाया, मैं अपने परिवार के लिए रोज दो चार बार ये संकल्प करती हूँ, ये सब देव कुल की मान आत्माएं हैं, तो सब में चेंज आती जाती है। कहा उनका व्यवहार बदलता जाता है, स्वीट होते जाते हैं वो, तो क्योंकि हम आधार हैं, हम मान हैं, पूर्वज हैं, तो हमारे संकल्प जैसे दूसरों के लिए होंगे उसका इफेक्ट उन पर होगा ही। तो हम एटीट्यूड्स पे भी ध्यान दें और नम्रता पर भी। अगर आप पावर में हैं और आपके बोल में नम्रता नहीं है तो इसको कहेंगे पावर का मिसयूज। और पावर के साथ यदि नम्रता है तो वो नम्रता हो जाएगी जीवन की ब्यूटी, कवच। बाबा ने कभी ये नाम दिया इसको, नम्रता तुम्हारे लिए कवच है, सेफ्टी का साधन। और यही निरहंकारिता का प्रतीक भी है। हम सभी इस पर बहुत ध्यान दें। और सुनाएं संगठनों में अभिधर के भाई, दूसरों की बातों का, उनके विचारों का सम्मान करना, बहुत प्रैक्टिकल सुंदर चीज है ये। विशेषताओं को देखना, उससे वाइब्रेशंस बहुत लविंग हो जाते हैं, लवली एटमॉस्फेयर हो जाता है जब हम देख दूसरे की विशेषताओं को देखते हैं। देखो आप इसको इस बात से ध्यान दें, हमारे यहाँ अब हजारों लोग आ गए हैं, 20,000 हो रहे आज। जो भी आ रहे हैं वो ये देखते हैं, ओह कितना अच्छा है, बहुत सुंदर, वाह वाह, तो उनकी अपनी फीलिंग गुड रहेगी ना। और उनमें से यदि 20,000 में से 200 ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, देखा भोजन ज्यादा ले लिया, फेंक रहे हैं अभी, और कुछ देखा देखा बाथरूम में गंदा कर रहे हैं, इनको अकल ही नहीं, पता नहीं कहां कहां से लोग आ गए, तो क्या होगा, यहां का जो सुख है वो ढीला पड़ जाएगा उनका। हम यदि दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक जाते हैं। और बोलो पीछे वाले, अब दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये हमारे संगठनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अभी अभी मैं कहीं था, एक माता पिता अपनी लड़की को लाए जिसने एमटेक किया है, अब ये कहती है मैं समर्पित होना चाहती हूँ, नौकरी नहीं करूंगी एमटेक। मैंने उसको भी देखा और माँ बाप से पूछा, आप लोगों की क्या इच्छा है, कहा नहीं, जो जिसमें ये राजी हम उसमें राजी हैं, हमें कोई इच्छा नहीं कि ये नौकरी करे, हमने इसने एक अच्छी क्वालिफिकेशन ले ली है और अब ये अगर सेवा में लगना चाहती है तो हमारी बहुत सुभावनाएं हैं, हमारी पूरी छुट्टी है। तो मैं उसको देखकर मेरे मन में कई विचार जागृत हो गए संगठनों में। अब उसने एमटेक किया है, देखिए उसकी भी इच्छा हो सकती है मुझे अच्छी अच्छी सेवाओं का चांस मिले। जो उसके साथी होंगे उनकी इच्छा होगी, ये कल की नई लड़की है, ये आगे बढ़ गई, हम पोछा ही लगाते रहे 10 साल से, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, खींचो इसकी टांगे पीछे। तो मैं उसको देखा और मैंने कहा, देखो आपको त्याग भी करना पड़ा, ये बात उसको मैंने नहीं कही, मैंने कहा इस क्वालिफिकेशन को एक तरफ रखकर आप स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन अपने में भरो, त्याग तपस्या का जीवन यदि आपको प्रिय हो तो आपका समर्पित जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो ये होता है ना, जो वेल क्वालिफाइड है, वेल क्या हाईली क्वालिफाइड हो गए ना बीटेक एमटेक वाले, अब वो जरूर चाहेगी हम अच्छे अच्छे टैलेंट्स हमारे अंदर हैं, हम भाषण करना सीखें, हम इन इन टॉपिक्स लें और लोगों की सेवा करें। लेकिन जो दूसरे हैं, जो पुराने हैं 10-20 साल के, उनके मन में जो विचार आ रहे वो भी कहीं ना कहीं ठीक हैं। अब यहां एक सुंदर बैलेंस लेके चलना, बड़े जो जिम्मेदार हैं, जो इंचार्ज हैं, वो कैसे इस बात में हारमोनी पैदा करते हैं, उसको भी आगे बढ़ाते हैं और उनको भी संतुष्ट रखते हैं, ये जो इंचार्ज होते हैं, निमित्त होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो संगठन में दूसरों को आगे बढ़ाना, और विशेष रूप से अगर हमें योग्य लोग मिल रहे हैं तो उनकी योग्यताओं का फायदा उठाना। क्या समझते हैं सभी? टीचर बहने बहुत बैठी हैं, क्या समझती हैं टीचर बहने? अगर हमें योग्य हैंड मिल रहे हैं, उनकी योग्यताओं का फायदा उठाना, ये बुद्धिमानी है। ये बुद्धि तो किसका फायदा हुआ? यज्ञ का, बाबा का। और मैंने ऐसी बहुत बहनें भी देखी हैं जो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर इंचार्ज वो हैं, और नए जो आ रहे हैं पढ़े लिखे उनको कहते सेवा तुम करो, हम हैं इधर, खाना भी खुद बना देती है। मैं तो एक बहन का देखा जो दादी थी, और जब तक कन्याएं सब सो के उठे 4 बजे तक वो सेंटर का झाड़ू पोछा लगा के तैयार रखती थी। वो सब उसको कहती थी, दादी आप ये क्या करती हो? अरे नहीं, तुम सब सेवा करो फील्ड में जाके, मैं नहीं करती तो घर की तो कर लूं। देखो ये महानताएं हैं ना। तो ऐसी आत्माओं की सेवा बहुत बढ़ जाती है। और मैं हमेशा कहा करता हूं, तो भंडारी किसकी भरेगी? वो तो तुम्हारी भरेगी ना। नाम किसका होगा? भाई फलानी बहन सेंटर इंचार्ज, उसकी सेवा इतनी ज्यादा है। और ऐसी बहुत बहनें हैं जो इस तरह दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके पास समर्पित होने वालों की लंबी लिस्ट रहती है। और कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत कम होते हैं। तो हम संगठन को इस तरह अट्रैक्टिव बनाएंगे, और अगर हमारे कारण कहीं संगठन कमजोर पड़ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपने को बदलना चाहिए, और जरूरत पड़े तो किनारा हो जाए, ताकि बाबा की सेवाओं में व्यवधान न पड़े। हमें कुछ लोस हो लेकिन यज्ञ को लोस न हो, तो यज्ञ का मालिक हमें लोस होने ही नहीं देगा ना, सब कुछ भरपूर कर देगा। तो इस तरह सभी एक महान लक्ष्य को लेकर आगे चलेंगे। निश्चित कर लो मेरा लक्ष्य ये है, उसके अलावा इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि समय नाजुक आता जाता है। कब क्या रुख ले ले खेल ड्रामा, ये किसी को पता नहीं। आज हम सुख शांति पूर्वक बैठे हैं, कल क्या होने लगे किसी को कुछ पता नहीं। अब बाबा आ रहे पुनः हमारे बीच में, और अब बाबा की दृष्टि, उसका प्यार, उसकी पालना तो सबको आनंदित कर रही है। तो अगले 3 दिन सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। पहला दिन कल का बिल्कुल सिंपल सिंपल, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। ये बहुत सुंदर फीलिंग देता है, बहुत आनंदित करता है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जितनी बार इसको हम फीलिंग में लाएंगे, हमारा सोया हुआ भाग्य जगता जाएगा। और साथ में करेंगे सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन। बाप दादा से मिलन, उनकी दृष्टि लेंगे। और जो शांतिवन वाले और रेगुलर क्लास वाले बैठे हैं, उन्हें फिर याद दिला दो, सवेरे बाबा से दृष्टि लेंगे और संसार को देंगे। बहुत सुंदर फीलिंग है ये। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, या पूर्वज हूं, या इष्ट देवी हूं, एक अच्छे स्वमान में स्थित होकर संसार को दृष्टि देंगे। और ये काम टीचर बहनों को तो रोज सवेरे करना ही है। सेकंड डे संडे की मुरली में था, बहुत अच्छा। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, याद है ना, छत्र छाया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान परम धाम से नीचे उतरते, उनको उतरते देखेंगे, और धीरे धीरे आकर हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन जाते हैं। तीसरा बाबा का दिन याद है, जो हमेशा हम करते हैं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य धीरे धीरे मुझसे मिलने आ रहे हैं। अभी करें अभ्यास, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और आ गए मेरी आंखों के सामने। सामने से उनकी किरणें पड़ रही हैं। तीनों दिन ये बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे और चारों ओर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे, ताकि आने वाले भाई बहने और अच्छे से अच्छा मिलन का अनुभव करें। ओम शांति। चलो अभी बाबा ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है, इस गुड फीलिंग में बैठेंगे और सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।